जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राध माधव जय कुंज बिहारी। जय राध माधव जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री गौर नित्याय जी की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के श्रीमद भागवत कथा प्रसंग में। और भगवत इच्छा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, जो भी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे आज के श्रीमद भागवतम अष्टम स्कंद 24वां अध्याय श्लोक संख्या 54 से लेकर के 58 तक। तो कथा प्रसंग में प्रवेश करने के पहले हम लोग सब गुरुजनों का, आचार्यों का आशीर्वाद लेंगे मंगलाचरण के रूप में। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सैगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांश सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी व्रसभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज के श्लोक में श्लोक संख्या 54 से लेकर 58 तक हम लोग करेंगे, लेकिन 54 से लेकर 57 तक कोई भी रूपा जी का तात्पर्य नहीं है, तो केवल मैं बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे। श्री सुखवाचा इत्युक्तवंतम न पतिम भगवान आदि पुरुषः मत्सरूपी महाम्बोधौ विरंस्तत्वम अब्रवीत। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करते हुए श्री भगवान ने परम ब्रह्म के विषय में उपदेश किया। पुराण संहिता दिव्याम सांख्य योग क्रियावतिम सत्यव्रतस्य राजर्षेर आत्म गुह्यम अशेषतः। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को वह आध्यात्मिक विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, और जो वह विज्ञान है जिससे पदार्थ तथा आत्मा के अंतर भक्ति योग जाना जाता है। इसके साथ ही भगवान ने पुराणों तथा संहिताओं में पाए जाने वाले उपदेश भी बतलाए। उन्होंने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की है। अस्त्र सीदृशी भी साकम आत्म तत्वम असंशयम नाव्यासिनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों के सहित नाम में बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार के विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य ब्रह्म से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य परम ब्रह्म के विषय में कोई संशय नहीं रहा। अतीत पल या पाया उत्थिताय सवेधसे हत्वा सुरम ह्य ग्रीवम वेदाना प्रत्याहर धरी। शंभु मनु के काल में पिछली बाढ़ के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा, और तब विद्या ब्रह्मा के निद्रा से जगने पर उन्हें सारा वैदिक ज्ञान प्रदान कर दिया। ये श्लोक की आवृत्ति हम लोग करेंगे प्रभु जी माता जी। सतु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णुः प्रसादात् कल्पे अस्मिन् आसीद् व्यवसतो मनुः स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णुः प्रसादात् कले अस्मिन् आसीद् वैवस्वतो मनुः स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णुः प्रसादात् कल्पे अस्मिन् आसीद् वैवस्वतो मनुः। हरे कृष्ण। आसीद् वैवस्वतो मनुः न तु सत्यवतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णोः प्रसादात् कल्पे अस्मिन् आसीद् वैवस्वतो मनुः। सातो सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णु प्रसादात कल्पेस्मिन् आसीद् वैवस्वतो मनुः माताजी सतु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णु पदादात् कल्पेऽस्मिन् आसीद् वैवस्वतो मनुः स तु सत्यवतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णोः प्रसादात् कल्प्यस्मिन् आसीद् वैवस्वतो मनुः हरे कृष्ण सः वह तु निसंदेह सत्यव्रतः सत्यव्रत राजा राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः ज्ञान तथा उसके व्यवहारिक उपयोग से अभिज्ञ विष्णु हो भगवान विष्णु की प्रसादात कृपा से कल्पे अस्मिन् इस काल में वैवस मनु के राज्य में आसीत हो गया वैवस्वता मनु हूं वैवस्वत मनु अनुवाद तात्पर्य भज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति द्वान स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया प्लीज रिपीट भगवान विष्णु की कृपा से राजा सत्यव्रत को सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया और इस काल में उसने अब सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया है तात्पर्य कृपया सुने शिला विश्वनाथ शक्ति ठाकुर का निर्णय है कि सत्यव्रत चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुए चाक्षुष मनवंतर के बाद वैवस्वत मनु का काल प्रारंभ हुआ भगवत कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्यावतार के उपदेश प्राप्त हुए और इस तरह उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा तो हमारा जो कथा प्रसंग चल रहा है इसमें भगवान के जितने भी अवतार हुए उन अवतारों में प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा हम लोग सुन रहे हैं और आठवें स्कंद के 24वें अध्याय में अभी लगभग विश्राम होने वाला है इस कथा प्रसंग का हम लोग क्या देखते हैं कि जो मत्स्य अवतार है वैवस्वत मनु की इस श्लोक में चर्चा हुई है उसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सत्यव्रत मनु सत्यव्रत राजा सत्यव्रत जो केवल जल पीकर तपश्चर्या कर रहे थे और जब वो तपश्चर्या कर रहे थे तो स्नान के समय उनकी अंजलि में एक मछली जैसे जल लिया आ गई और बड़ी करुणा से उस मछली ने कहा कि हे राजा मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए उचित स्थान दीजिए तो राजा ने कमंडलों में रखा हम लोग जानते हैं कथा प्रसंग में कमंडलों में विस्तार हो गया विस्तार होने के बाद में मछली ने राजा से कहा कि राजन ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है इसको थोड़ा कहीं और स्थानांतरित कीजिए राजा सत्यव्रत उनको फिर कमंडलों से एक छोटे बर्तन में, फिर बड़े में, फिर कुएं में, फिर झील में, फिर तालाब में, अंत में समुद्र में छोड़ते हैं। और जब अंत में जाकर के समुद्र में उस मत्स्य को छोड़ते हैं तो मत्स्य एक प्रार्थना राजा से करते हैं कि राजन, ये जो समुद्र है ये अनेक अनेक ऐसे जंतुओं से भरा हुआ है जो मुझको खा जाएंगे, इसलिए मुझको ऐसे मत छोड़िए। तो राजा सत्यव्रत उस समय उनको ज्ञान होता है कि ये साधारण जीव नहीं है, ये भगवान का कोई विशेष कृपा पात्र, स्वयं भगवान है। तो राजा उनसे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि आप कौन हैं? स्वयं भगवान हैं, क्योंकि मैं आपकी इस लीला से मोहित हो गया हूं, मुझे जानना है कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। मत्स्य रूपी भगवान राजा सत्यव्रत को सूचना देते हैं कि आज से सातवें दिन ये पृथ्वी जल प्लावित हो जाएगी और उस समय तीनों लोग जलमग्न हो जाएंगे। उस श्लोक के संदर्भ में शिला प्रभुपाद जो टीका करते हैं उसमें उन्होंने आचार्यों का उद्धरण देते हुए चर्चा की है कि ये जो जलमग्न होने वाली है पृथ्वी, वो साधारण जो नैमित्तिक प्रलय होती है या अत्यंतिक, चार प्रकार की प्रलय होती हैं, उनमें से वो प्रलय नहीं है। वो प्रलय कौन सी है कि दिन के समय ब्रह्मा जी को भगवान की प्रेरणा से ही निद्रा आ गई और निद्रा के वशीभूत जैसे ब्रह्मा जी हुए तो जो वेद थे उनके हाथ से चले गए। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने यह लीला की है। तो मत्स्य रूपी भगवान सत्राजा सत्यव्रत से कहते हैं कि आज से सातवें दिन पूरी पृथ्वी जल प्लावित हो जाएगी और उस समय तुमको एक कार्य करना है। सृष्टि का क्रम चलता रहना चाहिए, उस सृष्टि के क्रम के चलने के लिए आपके पास एक नाव आएगी और नाव जो आएगी वो नाव कैसी होगी? भगवान ने जब मत्स्य रूपी रूप धारण किया और अंत समय में जब लास्ट रूप धारण किया और समुद्र में डाला गया है, उनकी विस्तार कितना हो गया एक दिन के अंदर? 4 लाख कोस, 4 लाख कोस इतना विस्तार हो गया। भगवान कहते हैं कि एक नाव रूपी आएगी, नाव के अंदर तुम जितने भी बीज हैं, मंत्र हैं, वनस्पतियां हैं, लता पताका हैं, ऋषि हैं, उन सबको लेकर के उस नाव में बैठ जाना और उस नाव के जो कि प्रलय का जल जो होगा वो इतना तांडव मचाएगा कि उसमें वो नाव स्थिर नहीं रह सकेगी। इसलिए तुम क्या करना कि मैं वहां पास में ही रहूंगा मत्स्य रूप में और मेरा एक सींग होगा, उस सींग से वासुकी के द्वारा उस नाव को स्थिर कर देना। तो जितने समय ये प्रलय रहेगी उस समय मैं नाव को लेकर के चलता रहूंगा। पिछले दिनों हमारा मंदिर में बोट फेस्टिवल हुआ और ये भगवान का बोट फेस्टिवल चल रहा है। भगवान के बोट फेस्टिवल में हम लोग भगवान को नाम में बिठा करके उनका फेस्टिवल मनाते हैं। भगवान सारे जीवों के बीजों को लेकर के नाव के अंदर वो बोट फेस्टिवल मना रहे हैं। तो बड़ी सुंदर चर्चा उस समय होती है प्रभु जी माता जी, और जो वो चर्चा होती है वो किस प्रकार से चर्चा होती है कि जो मत्स्य रूपी अवतार हुआ भगवान का, वो एक बार नहीं हुआ। शास्त्रों में चर्चा आती है 4 बार हुआ। इस अवतार में जो 24 अवतारों की कथा हमारे पहले स्कंद में दी गई है, उसमें पहले स्कंद के 3rd अध्याय के 15वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, रूपम स जग्रहे मत्स्यम चक्षुषे साधि संप्लवते नाव्य रूप महीयमयाम आपय देव समृत मनु। कि चाक्षुष मनु के काल के बाद, चाक्षुष मनु के काल में नहीं, इसका मतलब जिस अवतार की चर्चा वहां पर हुई है, चाक्षुष मनु के काल के बाद पूरी तरह से बाढ़ आई। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय ब्रह्मा जी शयन कर गए, जो उनकी रात्रि होती है, और पूरी तरह बाढ़ आई। तो ये मत्स्य अवतार जो 24 अवतारों में दिया गया है, ये अलग है जो सत्यव्रत मुनि के साथ हुआ है। और पूरी दुनिया गहरे पानी में डूब गई, तो भगवान ने मछली का रूप धारण किया और वैवस्वत मनु को नाव पर रखकर उनकी रक्षा की। अभी हमने सुना 58 वर्ष में कि सत्यव्रत मनु ने ही सातवें मन्वंतर में वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया। तो उन वैवस्वत मनु को भी भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके ये पूरी जो ज्ञान है वो दिया है। परपोर्ट में बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भागवत के मूल टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रत्येक मनु के परिवर्तन के बाद हमेशा विनाश नहीं होता। आप समझिए, प्रत्येक मनु के परिवर्तन के बाद हमेशा विनाश नहीं होता। क्यों लिखा गया है ये? क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, हर मनु के काल में 71 मन्वंतर आते हैं। जब 14 मनु होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की संध्या जब होती है, ब्रह्मा जी विश्राम करने के लिए रात्रि को जाते हैं, उस समय पूरी प्रलय होती है, लेकिन बीच में आवश्यक नहीं है, ये रूपा जी ने कोट किया है। फिर भी चाक्षुष मनु के काल के बाद जल प्रलय सत्यव्रत को कुछ चमत्कार दिखाने के लिए हुआ। लेकिन ये श्रीधर स्वामी की टीका प्रभुपाद जी ने कोट की है। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रमाणिक ग्रंथों, कौन से ग्रंथ हैं, जैसे विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि, हरिवंश में बड़ा डिटेल में चर्चा की गई है, से निश्चित प्रमाण दिया गया है प्रत्येक मनु के अंत के बाद हमेशा विनाश होता है। अब दो चीजें अलग अलग हो गई, उसके समझने के लिए हमको कल्पांतर भेद समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के हर कल्प में अलग अलग प्रकार से भगवान की लीलाएं होती हैं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, संहिता हैं, वो सब भगवान वेद के मुख से निकले हैं, उनके मुख से लिपिबद्ध किए गए हैं, तो उनमें कोई भी चीज असत्य नहीं है, ये हमको मान करके पहले चलना पड़ेगा। कोई भी चीज असत्य नहीं है। तो दोनों बातें जो दी गई हैं, किसी कल्प में कोई सत्य होता है, किसी कल्प में कोई सत्य होता है, दोनों में अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने भी श्रील जीव गोस्वामी का समर्थन किया है। उन्होंने श्री चक्रवर्ती प्रभुपाद ने प्रत्येक मनु के बाद इस बाढ़ के बारे में भागवतामृत से उद्धरण भी दिया है। इसके अलावा विशेष अवधि में, ये पूरा क्लेरिफिकेशन हो गया इस श्लोक के परपोर्ट में, इसके अलावा विशेष अवधि में भगवान के भक्त सत्यव्रत पर विशेष कृपा दिखाने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया। तो दो अवतार हो गए, व्यवस्थित मनु के लिए ब्रह्मा जी की कल्प के अंत में, उनका जो मनवंतर के अंत में उन्होंने अवतार लिया, और उस चाक्षुष मनु के मनवंतर में बीच में जब ब्रह्मा जी को निद्रा आने लगी, जैसे कभी कभी हम लोग को भी बीच में निद्रा आती है, उस समय ये दूसरा अवतार लिया। तीसरा अवतार मत्स्य रूप में कश्यप मुनि की कथा प्रसंग में आता है। पद्म पुराण से बड़ी सुंदर कथा आती है कार्तिक महात्म्य के महात्म्य में, कार्तिक मास के। जब शंखासुर ने, जो समुद्र का पुत्र है, सारे देवताओं को अमरावती से निकाल दिया, सब इधर उधर चले गए, तो शंखासुर देखते हैं कि फिर भी देवताओं की शक्ति ज्योंकी त्यों बनी हुई है। देवताओं को भोग कहां से प्राप्त होता है प्रभु जी माता जी? यज्ञ करने से। यज्ञ करते हैं तो उनको भोग प्राप्त होता है, उनका भोजन वही। तो शंखासुर ने यह सोचा कि इनका मतलब यह हुआ कि इनको अभी भी भोग प्राप्त हो रहा है। उसका मूल क्या है? वेद। तो शंखासुर ने जाकर के ब्रह्मा जी के यहां से जाकर के चारों वेद उसने चुरा लिए, और चारों वेद जब उसने चुराए तो शंखासुर कौन है? असुर है। वे श्री भगवान के श्री मुख से निकले हैं तो कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो सारे वे शंखासुर से हाथ से निकल करके समुद्र में गिर पड़े। अब वेद गए तो यज्ञ कार्य बंद हो गए, सारी चीजें बंद हो गई। तो उस समय सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान वचन देते हैं। ये हुआ जो कार्तिक मास में एकादशी आती है, उस दिन सारे देवताओं ने मिलकर के बड़ा सुंदर, और इंद्र ने मृदंग बजाया, वरुण ने ताल ठोकी, बड़ा सुंदर कीर्तन किया। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जब निद्रा से उठते हैं, जब ये देव उठनी एकादशी आती है, उस दिन की कथा है ये, तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं आज तुमने बड़ा सुंदर कीर्तन के द्वारा मुझे जगाया है। इसका मतलब क्या है? भगवान के हर कथन में हमको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। जब हम कीर्तन करते हैं, हमारा प्रसन्न होना या ना होना कोई आवश्यक नहीं है, उस कीर्तन के द्वारा भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमको कीर्तन करना चाहिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। भगवान की कृपा से हम प्रसन्न हों वो अलग बात है, लेकिन कीर्तन भगवान को प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए हमको। खैर, कथा में लंबा हम प्रवेश नहीं करेंगे। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि सारे ऋषियों मुनियों को बुलाया, उनको कहा कि आप लोग प्रयागराज में जाकर के, वहां से ये बद्री में ये कथा हुई, और उसमें जाकर के समुद्र में जाइए, सारे बीज मंत्र वेद जितने हैं सब वहां पड़े हुए, उनको बीन करके लाइए। तो भगवान ने उस समय मत्स्य अवतार धारण किया और जो हैग्रीव लेकर के आया था उसका वध किया, और वध करने के बाद में भगवान ने सारे के सारे जितने भी वेद थे ब्रह्मा जी को वापिस किए। पद्म पुराण से ये एक चौथी कथा आती है मत्स्य अवतार की, कि माता दिति, उनके बहुत सारे पुत्र हुए। हम किसको जानते हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को। उसमें मकर है, हैग्रीव भी दिति का ही पुत्र है, जंबू, मैं आदि आदि बहुत पुत्र हुए। तो मकर नाम का जो पुत्र था दिति का, उसने माया फैला करके ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। और ब्रह्मा जी को मोहित करके, क्योंकि असुर जानते हैं देवताओं की शक्ति वेदों में है, वेद चुरा लेते हैं वो, जैसे शंखासुर ने चुराए, वो भी वेद चुरा के ले आया। और जैसे वेद चुराए, श्रुतियां चली गई, सारा सृष्टि धर्म शून्य हो गई। उस समय भगवान ने फिर मत्स्य रूप धारण किया, और मत्स्य की जो थूतनी आगे का हिस्सा होता है उससे जाकर के मकर का वध किया, और वेद ब्रह्मा जी को उन्होंने दिए। तो इस प्रकार से मत्स्य अवतार भगवान बार बार धारण कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? भगवद गीता में कहा गया पवित्र आय साधु नाम विनाशा च दुष्कृताम, वो अलग बात है, लेकिन विशेष धर्म की स्थापना हम लोग देख रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए बार बार वेदों को सुरक्षा भगवान प्रदान कर रहे हैं और वेदों को स्थापित कर रहे हैं। जितने भी भगवान के, चाहे मत्स्य अवतार हुआ, कुर्मा हुआ, वराह हुआ, नरसिंह हुआ, जितने भी अवतार हुए हैं, उनमें अंतर भेद कुछ है? अंतर भेद का मतलब भाई मीन अवतार है या कच्छप अवतार है, ये कैसे अवतार हैं, वराह अवतार है। सृष्टि की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो मीन बहुत ही तुच्छ जीव है एक तरीके से, या फिर वराह या फिर कच्छप। लेकिन भगवान के जब अवतार होते हैं, चाहे वो मीन है, चाहे कृष्ण है या राम है, उनमें कोई अंतर भेद नहीं है। भगवान अपने जो लीला अवतार, ये सारे कौन से अवतार हैं? लीला अवतार। भगवान के छह प्रकार के अवतार होते हैं, कौन से छह प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के? जैसे पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मन्वंतर अवतार, युग अवतार और शक्ति आवेश अवतार। तो ये जो लीला अवतार हैं, इन लीला अवतार में भगवान ने मत्स्य रूप में जो लीलाएं की हैं, उसमें जो भगवान ने ज्ञान, जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी, चक्षुष ये सत्यव्रत मुनि को दिया है, वो अवतार लेकर के वो ज्ञान जो उनको दिया है, वो ज्ञान भगवान के उस ज्ञान से भिन्न नहीं है जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में अर्जुन को दिया, उद्धव को उद्धव गीता के रूप में दिया, या भगवान ने श्रीमद् भागवतम में अलग अलग रूप में ज्ञान दिया, कहीं कोई अंतर नहीं है। किस प्रकार से अंतर नहीं है, हम लोग देखते हैं कि चक्षुष ये सत्यव्रत मुनि ने उनसे क्या क्या प्रार्थना की है भगवान से मत्स्य अवतार के रूप में। 46वें श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि भगवान की कृपा से उन लोगों को भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं। आप लोग ध्यान से सुनना कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान खो बैठा है, आत्म तत्व उसके पास नहीं है, उन लोगों को भगवान की कृपा से ही भद्व भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। चाहे जो कुबेर के पुत्र हैं नलकुबर मणिग्रीव, नारद मुनि से कृपा प्राप्त हो गई श्राप के रूप में, चाहे नारद मुनि की कृपा ध्रुव को प्राप्त हुई या प्रहलाद को प्राप्त हुई, अंतर नहीं है, कृपा कृपा होती है। तो राजा सत्यव्रत कह रहे हैं कि आपकी कृपा से भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। कौन से, किनको मिलता है? जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। हमको क्या शिक्षा मिलती है प्रभु जी माता जी से? हमको शिक्षा ये मिलती है कि हम में से सब लोग भौतिक जीवन में हैं, लेकिन वृंदावन की ब्रज भूमि में आने के बाद में, भक्तों के संग रहने के बाद में, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अभी भी हम भौतिक जीवन में हैं। भगवान की कृपा से ही उस भौतिक जीवन से दूर ला करके ब्रज भूमि के अंदर भगवान की कृपा हमको प्राप्त हुई, हम यहाँ आकर के बैठ गए और उनकी कृपा से ही भगवत भक्तों का संग हमको प्राप्त किया। उस भगवत भक्तों के संग से हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि दर्शन, इसकी कृपा हमको मिल रही है। तो ये सब कृपा श्री भगवान की ही है। आगे सत्यव्रत मुनि कहते हैं, मैं उन भगवान को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। बड़ी सुंदर बात बताई है। अर्जुन ने जब तक ये नहीं कह दिया कार्पण्य दोषो उपस्वा प्रच्छाम धर्म धर्मों से चेता यश्रेशान ब्रूही तन में शिष्यस्ते हम सात्वाम माम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूं, जब तक अर्जुन को ज्ञान प्राप्त नहीं। उसी प्रकार से ज्ञान लेने के लिए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैं आपको अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूं। आगे वो कहते हैं कि हे मेरे गुरु, मेरे हृदय की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दें। हर किसी के हृदय में इतनी ग्रंथियां हैं। पुरुषोत्तम योग में भगवत गीता में भगवान ने कहा कि हम ज्ञान की तलवार लेकर के उन ग्रंथियों को काटें। भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में भी उसकी चर्चा हुई है, किस प्रकार से पूरा डिटेल में विवरण दिया गया, किस प्रकार से हम उन ग्रंथियों को काट सकते हैं। वही प्रार्थना सत्यमुनि कह रहे हैं कि मुझे उनको काटने में। फिर कहते हैं कि उपाय बता रहे हैं, देखिए कितना सुंदर उपाय बताया। जो भगवत भव बंधन से छूटना चाहता है, जो भव बंधन से छूटना चाहता है, उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान भव बंधन से छूटने का उपाय क्या है? केवल और केवल भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा किस रूप में होगी? किसी भी रूप में हो, कीर्तन में हो, कथा में हो, बपू में, भगवान के जो सेवा में जो माता प्रभु जी लगे रहते हैं उस सेवा, वो सब सेवा करने से सत्यमुनि कह रहे हैं कि भव बंधन छूटने का ये एक उपाय है। और वो क्यों है? क्योंकि पवित्र अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छूटता है। जब वह भगवत भक्तों के संग में आते हैं और भगवत सेवा करते हैं तो जितने भी तमोगुणी पवित्र और अपवित्र कर्म हैं उनसे छूट हमको छूट मिल वो छूट जाते हैं या उनको हमको छोड़ देना चाहिए। फिर कहते हैं कि आप हमारे गुरु बने क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। जितने भी गुरु हैं उनके आदि गुरु श्री भगवान हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। क्यों चरण ग्रहण करता हूं? क्योंकि सारे देवता जितने भी गुरु हैं अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान नहीं कर सकते। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बड़ा ध्यान से इन चीजों में शास्त्र में बड़ा ध्यान देने की बात है। जितने भी देवता हैं जितने भी गुरु हैं उनका निरादर नहीं करना है। सबको समुचित सहयोग से सम्मान भी देना है और उनसे जो सेवा बन सके वो भी करनी। लेकिन इष्ट हमारे जो हैं श्री भगवान कृष्ण जो इष्ट हैं उनकी सेवा करने से ही हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सर्वदमनि कह रहे हैं कि उन्होंने उदाहरण दिया कि संसार में जो अंधे लोग हैं दूसरे अंधे को गुरु बना लेते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कि भाई एक अंधा दूसरे अंधे को लेकर के कहां जाता है? गड्ढे में ही जाता है ना। तो उसी प्रकार से हमको अपने आध्यात्मिक जीवन में गुरु बनाते हुए गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अंधे के साथ अंधे वाला काम हमको नहीं करना चाहिए। फिर शाश्वत मुनि कह रहे हैं कि आप सबके भगवान को क्यों कह रहे हैं कि आप सबों के परम हितेशी परम प्रियतम नियंता परमात्मा परम उपेदस उपदेशक परम ज्ञान के दाता समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, सबके हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान ने भगवत गीता में बड़ा सुंदर फॉर्मूला दिया। कौन सा फॉर्मूला दिया? शांति का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है शांति का? भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्मा मम शांतिम इच्छति। सुहृद, अगर हमारा कोई सच्चा हितैषी है वो भगवान है। निधानम बीजम अव्ययम, अगर कोई आश्रयदाता है केवल भगवान है, दूसरा कोई आश्रयदाता नहीं है। और ये सब कहने के बाद भी सत्यमुनि कहते हैं कि मैं जिन लोगों ने आत्मज्ञान खो दिया है उनको आत्म साक्षात्कार करने के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है प्रभु जी? आत्म साक्षात्कार का मतलब ये है पहले अपने को जानना। हम अपने को कितना जानते हैं? और ये नहीं जानने के कारण ही संसार में हम दुखी रहते हैं। हम किस चीज के लिए दुखी होते हैं? संपत्ति नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, बेटा को मैंने कहा नहीं मानता, जॉब चला गया, इन सब चीजों के लिए संसार दुखी रहता है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उसने संसार के ऐसे लोगों ने भगवान से अपना संबंध तोड़ लिया है। भगवान को नहीं जानते, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, पितामस जगतो माता धाता पितामा वेद्रम पवित्र ओंकारा ऋक्षाम जो रेवच। पितामस जगतो, इस तीनों लोकों में सबका पिता मैं हूं। और भगवान मतलब सैड ऐश्वर्य, जिनके पास अनंत ऐश्वर्य है, अनंत ज्ञान है, उनके पास अनंत बल है, अनंत सुंदरता है, अनंत बुद्धि है, अनंत वैराग्य है, ऐसे भगवान वो हमारे पिता है। तो हमें दुखी होने की जरूरत है या नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। तो वो जगाने के लिए हमको इन शास्त्रों का अध्ययन, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ती है। ये सब सुनने के बाद में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान ने जब सत्यव्रत मुनि की ये प्रार्थनाएं सुनी तो उनको परम ब्रह्म के विषय में उपदेश दिया। अब परम ब्रह्म के विषय में क्या उपदेश देंगे वो? परम ब्रह्म, परम सत्य, भागवतम का आरंभ होता है सत्यम परम धीमहि, पहले श्लोक में आता है सत्यम परम धीमहि। ये जो परम ब्रह्म है, अर्जुन ने क्या व्याख्या की दसवें श्लोक में, दसवें अध्याय में, जब अर्जुन ने चारों बीज श्लोक सुन लिए, कौन से श्लोक से? आठवें से ग्यारहवें तक, अहम सर्वस्व प्रभु, वहां से लेकर के ग्यारहवें श्लोक तक तो अर्जुन ने सुन लिए, तुरंत अर्जुन का जो आत्मज्ञान था, जो आत्म तत्व था, वो जाग उठा। क्यों जाग उठा? भगवान ने पंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन से क्या कहा? ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मना सष्टान प्रकृष्ठानी कर सती। ममेव अंशो जीव लोके, सारे जीव मेरे अंश हैं, और षट ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य ज्ञान भी है, अनंत ज्ञान। तो जब भगवान के अंश हैं तो ज्ञान हमारे अंदर भी है या नहीं है? प्रभु जी माता जी बताइए मुझे। वही ज्ञान हमारे अंदर भी विद्यमान है, लेकिन वो ढक जाता है, खो जाता है, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है। भगवत गीता में उदाहरण आते हैं, तीन तीन उदाहरण दिए, धुआं अग्नि को ढक लेता है, गर्भ बच्चे की भ्रूण को ढक लेता है, इस प्रकार से। तो वो ज्ञान को जगाने के लिए आवरण को जब हमको हटाना है, तो उसके लिए ये जो हमारा भक्तों का संघ है, जो सत्यव्रत मुनि ने कहा, वो उसको हटाने में हमारी मदद करता है। तो इसीलिए अर्जुन ने तुरंत कहना क्या शुरू कर दिया, परम ब्रह्म परम धान पवित्रम परमं भवान। परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो। तो परम ब्रह्म विषय के रूप में जो मत्स्य रूपी भगवान ने ज्ञान सत्यव्रत मुनि को दे दिया है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो किस रूप में है कि परम ब्रह्म स्वयं भगवान है। इसीलिए जितने भी अवतार हैं, एते चांस कला पमसाह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक भागवतम के पहले स्कंद के, एते चांस कला पमसाह, कि कृष्ण स्वयं भगवान है, जितने भी अवतार हैं उनसे ही आ रहे हैं, उनसे अलग नहीं है। तो इसलिए जो ज्ञान और विज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है, मत्स्य रूपी भगवान भी उसी रूप में ज्ञान अर्जुन को, सत्यव्रत मुनि को दे रहे हैं। इस अध्याय में, इन श्लोकों में उसकी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि बहुत हो चुकी है। अब ये जो परम ब्रह्म विषय ज्ञान है, उसको हम कैसे समझें प्रभु जी माता जी से? शॉर्ट में अगर समझना है हमको, भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में और छठे श्लोक से लेकर के और तेरहवें श्लोक तक, समय कम है, आप लोग घर में देख सकते हैं, जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सैवई पमसाम परो धर्मो यतो भक्ति दोक्षे अहत के प्रता यजात्मासु प्रसीदति। पहले दुख की बात की थी, संसार के में सब दुख भोग रहे हैं, भगवान ने भी कह दिया दुखाले मासवासतम। उससे अगर बाहर निकलना है तो हमको दुख का अपोजिट सुख। तो ये कहा गया कि यजात्मा सुप्रसिद्धति, दुख सुख नहीं, सुख की भी सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, सुप्रसिद्धि कब होगा, सेवई पुमसाम परो धर्मो, जब हमारा जो सर्वोच्च हमारी ड्यूटी है, जो हमारे कर्म है, वो कैसे होने चाहिए कि उससे हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो हमारा कोई भी कार्य जो भी हम करते हैं उसमें हमको देखना चाहिए ये करने से मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो वो कार्य हमको छोड़ देना चाहिए, अगर होती है सहर्ष उसको करना चाहिए। फिर कहा गया कि श्रम ए भी केवलम धर्मासन स्ता पुमसाम विश्वक्सेन कथा सुयहा या नोप्यदति रतिम श्रम एव ही केवलम। आठवें श्लोक में दूसरे अध्याय के कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो उसकी स्थिति है उसी के अनुसार, जो उसकी वृत्ति है, जैसी भी वृत्ति है, हमारे कर्म और गुणों के अनुसार जो भी उसकी वृत्ति है वो कार्य करता है, अगर वो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण पैदा नहीं करता वो केवल श्रम एव ही केवलम। ये ब्रह्म विषय ज्ञान है कि भाई वो सारा ज्ञान जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी वृत्ति है, जो भी आपकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, वो करने से मुझे भगवान के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, वो केवल श्रम मात्र है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। और ये सब करते करते 13वें श्लोक में जाकर के कहा गया अतः पुम विद्वत श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सहा सुनिश्चित धर्म से सम सिद्धिर हरि तोषणम कि हे द्विजों में श्रेष्ठ, जो इसका निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि जाति और जीवन के आदेश के अनुसार वर्णाश्रम विभाग सा जिसमें स्थित हो वही से उससे ही काम करो, और व्यवसाय के लिए जो आपका ड्यूटी है वो करते रहो, लेकिन उसमें उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, सम सिद्धिर हरि तोषणम, भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे वो गर्हित है, उसको हमको नहीं करना चाहिए। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा पुराणम संयुतम दिव्याम सांख्य योग क्रिया अभ्रवृत्तिम कि भगवान ने कौन सा योग बताया, सांख्य योग। श्रीमद भगवत गीता में वही योग अर्जुन को भगवान ने दिया, दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक आत्मा के विषय में ज्ञान दिया, नैनम छिंदन्ति सरसाणि नैनम जयति पाप का नाच के न सोचति मारुता अविनाशी तद्विद्धि येन सर्व, पूरा आत्मा के विषय में भगवान ने पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया। लेकिन वो ज्ञान परपोट जो लिखा है श्लोक में भक्ति योग, कैसे भक्ति हो गया, क्योंकि भगवान ने ये देने के बाद में 39वें श्लोक में जाकर के 2.13 में अर्जुन से क्या कहा, ऐसा भीता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम सुनु बुद्धि युक्ता या पार्ता कर्म बंधन प्रहाससी। अर्जुन जो कर्म बंधन की वजह से संसार में जीव सड़े पड़े रहते हैं, कर्म बंधन की वजह से इतने कष्ट भोगते हैं, उससे छूटने का उपाय क्या है, जो मैं तुम्हें आगे भी बताने जा रहा हूं, सांख्य योग जो मैंने तुम्हें बताया उसके बाद भी बुद्धि योग जो भक्ति योग है, जब भक्ति योग में लगोगे तो कर्म बंधन प्रहाससी। और कैसे करें भगवान, ऐसा भी दासंग बुद्धि योगे तुमाम सुनो, तुम उसको बड़े ध्यान से सुनो, जब तुम ध्यान से सुनोगे तो निश्चित रूप से कर्म बंधन से तुम छूट जाओगे। तो ये सारा ज्ञान भगवान ने किसको दिया, सत्यवत मनी को दिया, मत्स्यरूपी भगवान ने। उसके बाद प्रभु जी माता जी आत्म तत्व के बारे में बताते हैं भगवान जो हैं कि आत्म तत्व जो है वो क्या है, उन्होंने कहा साकम आत्म तत्वम असंशयम कि आत्म साक्षात्कार विषय में भगवान के उपदेशों को सुना, वो सारे उपदेश सुनने के बाद में फिर भगवान ने बताया ज्ञान विज्ञान सहितम, और ज्ञान विज्ञान सहितम क्यों किया कि नौवे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूय ज्ञानम विज्ञानम सहितम याद्यात्वा मोक्षेस्वात्। कि ज्ञानम विज्ञानम सहितम कि तुम्हारे को मैं ये ज्ञान विज्ञान के द्वारा जो ये बता रहा हूं उससे क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी अशुभ हैं कष्ट हैं वो सब चले जाएंगे। तो ज्ञान विज्ञान के साथ में खाली ज्ञान नहीं दिया, विज्ञान भी भगवान ने शत्रुघ्न मुनि को दिया। और वो सब दे देने के बाद में जो आज का श्लोक हमारा है उसमें क्या कहा गया है कि कले अस्मिन आसीद व्यवसतो मनु। जो दूसरा अवतार हुआ व्यवसपत मनु का, जो उस समय कल्प के अंत में सत्यव्रत ने व्यवसत मनु के रूप में शरीर ग्रहण किया, उसमें भी भगवान ने मत्स्य रूपी अवतार धारण करके सत्यव्रत मुनि को दोबारा से वो ज्ञान दिया। और तात्पर्य में उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने लिखा है, शिलाभिनाथ ठाकुर का निर्णय है, सत्यव्रत चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुए। चाक्षुष मनवंतर का व्यवस्थ मनु के काल के प्रारंभ में हुआ, चाक्षुष मनवंतर के बाद वेद मनु के काल प्रारंभ हुआ। और भगवत कृपा से सत्यव्रत को द्वितीय मत्स्य अवतार से उपदेश प्राप्त हुए और इस तरह उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमको जो अध्यात्म है उसको बड़ा गंभीर रूप में प्रभु जी माता जी लेना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म ही है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वही है जो हमको इस भवबंधन से छुटकारा दिला सकता है, जैसा कि सत्यव्रत मुनि ने मत्स्य भगवान से प्रार्थना के रूप में भी कहा। तो जितने भी इन शिक्षाओं के रूप में हमको उपदेष मिलते हैं, हम लोग भागवत कथा एक बार नहीं अनेक अनेक बार होती है, पुनरावृत्ति उसकी होती है, भगवत गीता की बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि बार बार सुनने से, बार बार उसके हमारे क्रमण श्रवणों से जाने से, हृदय में जाने से हमको उसके बारे में जो वास्तविक ज्ञान है हमारा जो खो चुका है उसकी प्राप्ति हो सकेगी। और उसके बाद भगवत सेवा करके हम लोग वापिस भगवान की सेवा में लग सकेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज में भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला गुरुदेव की, नित्याय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी प्रसाद का टाइम तो हो गया है, लेकिन कोई प्रश्न है तो भी ले सकते हैं, अन्यथा मैं अलग से बात कर सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।